ईरानी संस्कृति और कला।
प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम ईरानी संस्कृति और कला की 20वीं कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं अख्तर अब्बास और हसन अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए। कार्यक्रम में ईरानी बागों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।
ईरान एक ऐसा देश है जहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के साथ ही कलकल बहती नदियां और झरने भी हैं। यहाँ पर घने जंगल हैं तो मरुस्थलीय क्षेत्र भी पाए जाते हैं। अगर कहीं पर मरुस्थलीय क्षेत्र हैं तो फिर दूसरी ओर हरे भरे क्षेत्र भी मौजूद हैं। अधिक पहाड़ों के कारण ईरान के बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अपेक्षाकृत पानी की कमी है, लेकिन वहाँ के परिश्रमी लोग पानी की इस कमी को दूर करने के लिए भरसक प्रयास करते रहते हैं।
ईरान में प्राचीन काल से बागों का चलन रहा है। यहाँ पर आरंभ से निजी और सार्वजनिक बाग रहे हैं। बाग वे स्थान हैं जहाँ पर ईरानी आदिकाल से मनोरंजन करते आए हैं। बागों को बनाने का चलन वैसे तो संसार के अन्य क्षेत्रों में भी पाया जाता है, किंतु ईरान में इसे बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। इससे पहले हमने कहा था कि कई हजार साल पहले से ईरान में बाग लगाने का सिलसिला मिलता है। उस काल से यहाँ पर अलग अलग प्रकार के एवं विविधतापूर्ण बाग लगाए जाते रहे हैं। ईरान में जो बाग रहे हैं वे सामान्यतः या तो समतल ज़मीन पर होते थे या फिर ऊंची नीची ज़मीन पर लगाए जाते थे। कहीं पर बाग किसी कृत्रिम ज़मीन पर या झील पर लगाए जाते थे। ईरान के समतल भूमि पर लगाए जाने वाले बागों में बागे फीने काशान का नाम लिया जा सकता है, जबकि ऊंची नीची धरती या टीले वाली भूमि पर जो बाग लगाए गए उनमें से बागे तख्त शिराज का नाम लिया जा सकता है। वे बाग जो किसी भी कृत्रिम झील या नहर के किनारे लगाए जाते थे उन्हें बागे आबी या पानी वाले बाग के नाम से जाना जाता था, जिसका एक उदाहरण तबरीज नगर का ईलगुली बाग है। वैसे भी पहले बहुत से बाग नदियों के किनारे भी लगाए जाते थे। इसका एक उदाहरण काखे आईने इस्फहान है, जो जायंदे रुद नदी के किनारे स्थित है।
ईरानी बागों को उनकी उपयोगिता के हिसाब से भी वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे बागे मीवे, बागे सुकूनत गाही और बागे मज़ार। बागे मीवे या फलों वाला बाग आर्थिक दृष्टि से सबसे अच्छा बाग माना जाता है। इसमें लागत कम आती है जबकि इससे आय अधिक होती है। कुछ बाग ऐसे होते हैं जिन्हें बागे सुकूनत गाही कहते हैं, अर्थात जहाँ इंसान रहता है वहाँ पर वो बाग लगवाता है। सुकूनत गाही बाग उसी को कहते हैं। ऐसे बाग पहले ज़माने में सामान्यतः महलों में या फिर बड़े लोगों के यहाँ ही हुआ करते थे। वे लोग बड़े आलीशान घर बनवाते थे और उसमें अपनी आसानी के लिए बाग लगवाया करते थे। उनके निकट इस बाग का महत्व आर्थिक दृष्टि से नहीं होता था। कुछ लोग मज़ारों के लिए बाग लगवाया करते थे। ऐसे लोग पहले आलीशान बाग लगवाया करते थे और फिर वहाँ पर एक स्थान कब्र के लिए निर्धारित कर देते थे। जब उनका देहांत हो जाता था तो उन्हें उसी बाग के भीतर एक निर्धारित स्थान पर दफन कर दिया जाता था। इतिहास में ऐसे कई महान लोग गुजरे हैं जिनके मज़ार बागों में हैं। उदाहरण स्वरूप ईरान के विश्वविख्यात कवि अत्तार नेशापुरी, उनका मज़ार नेशापुर के बाग में स्थित है।
ईरानी शैली में जो बाग लगाए जाते थे उनमें इस बात का ध्यान रखा जाता था कि दूर से सारा बाग दिखाई दे। इस प्रकार के बागों में इमारतों के सामने का वातावरण बिल्कुल ही साफ दिखाई देता था और बीच में कोई रुकावट नहीं होती थी। इमारत की खिड़की से खड़े होकर पूरे बाग को सरलता से देखा जाता था। इमारत के सामने की ओर बड़े वृक्ष नहीं लगाए जाते थे, जिसके कारण इमारत के भीतर से बाग का दृश्य बहुत ही मनमोहक दिखाई पड़ता था।
सामान्यतः बाग के विभिन्न क्षेत्रों में कुश्क नामक इमारत बनाई जाती थी, किंतु मुख्य इमारत बाग के बीच में हुआ करती थी। इसकी विशेषता ये थी कि ये चारों ओर से दिखाई देती थी। हालांकि ऐसे बाग भी थे जो मुख्य इमारत के पीछे बनाए जाते थे। कोने में बनाया जाने वाला यह हिस्सा बाग वालों के लिए मनोरंजन का एक उपयुक्त स्थल होता था। वैसे ईरान के सभी बागों में इमारत के सामने आयताकार रूप में हरा भरा मैदान बनाया जाता था। इसके इर्द गिर्द हौज बनाए जाते थे जिनके दोनों ओर एक प्रकार के पेड़ या वनस्पतियाँ लगाई जाती थीं। इस प्रकार इमारत के भीतर एक हरा भरा प्राकृतिक दृश्य उत्पन्न हो जाता था जिसके भीतर सुंदर सा हौज बना होता था।
ईरानी बागों को वर्गाकार या आयताकार दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। इस प्रकार के बागों में लंबी आयु वाले पेड़ लगाए जाते थे जो कि लाइन से होते थे। इस लाइन में कहीं कहीं पर कम आयु वाले छोटे पेड़ भी हुआ करते थे। ये ज्यामितीय व्यवस्था इतनी सूक्ष्म और अच्छी होती थी कि हर ओर से पेड़ एक लाइन में लगे दिखाई देते थे।
सामान्य रूप से पारंपरिक बागों को बनाते समय उनमें तरह तरह के पेड़ लगाए जाते थे। ये पेड़ बड़े भी होते थे और छोटे भी। बागों में स्थानीय एवं विदेशी हर प्रकार के पेड़ लगाने का चलन था। ईरानी बागों में अधिकतर चनार के वृक्ष देखे जा सकते हैं। इस वृक्ष को ईरानी बागों का मूल भाग भी कहा जा सकता है। ये पेड़ ईरान के पश्चिमी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जिन्हें विदेशियों से आयात किया गया है। उनका नाम ओरिएंटल प्लेन या फिर प्लेन ट्री है। इनकी ऊंचाई 30 मीटर तक होती है। इस प्रकार के वृक्ष घुमावदार होते हैं जो छाते की भांति दिखाई देते हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है कि मानो छोटे छोटे पेड़ों और पौधों पर कोई हरा छाता रखा हुआ है। चनार का पेड़ नम जलवायु में बड़ी आसानी से फलता फूलता है। ईरान के पारंपरिक बागों में चनार के पेड़ की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ईरान में अब भी सड़कों के किनारे और पगडंडियों पर बहुत बड़ी संख्या में चनार के पेड़ पाए जाते हैं।
बहुत से शोधकर्ताओं ने संसार में बागों के बारे में दो आदर्श पेश किए हैं, एक ईरानी आदर्श और दूसरा जापानी आदर्श। ऐसे में ये जानना रोचक होगा कि जापान में बाग लगाने के काम और ईरान में बाग लगाने के काम में मूलभूत अंतर क्या है। जापान में बाग लगाने में प्रकृति में मौजूद तत्वों का भरपूर प्रयोग किया जाता है, लेकिन ईरान की बाग शैली इससे कुछ अलग है। जापानी बाग लगाने की शैली में रंग बिरंगी वनस्पतियों, पत्थर की सीढ़ियों, कम गहराई वाले हौज तथा इसी प्रकार की चीज़ों का प्रयोग किया गया है। उनमें बांस, लकड़ी या पत्थर के छोटे पुलों को भी बनाया जाता है। इन बागों में कृत्रिम छोटी झीलें और वनस्पतियों को भी इस्तेमाल किया गया है।
विगत में जापानी बागों में घर भी बनाए जाते थे। इनको किसी सीमा तक प्रकृति के निकट लाने की कोशिश की जाती थी। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जापानी बाग वास्तव में एक छोटी सी दुनिया है जिसमें प्रकृति के सारे ही तत्व मौजूद हैं। हालांकि ईरानी बाग लगाने की शैली में बाग प्रकृति के बाहरी स्वरूप का प्रतीक नहीं होता, बल्कि ये मनुष्य की स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा को साकार बनाने का एक प्रयास मात्र है।
ईरान के ऐतिहासिक नगरों के भीतरी दृश्य में केंद्रीयता को विशेष महत्व प्राप्त रहा है। उदाहरण स्वरूप पुराने ईरानी नगरों के केंद्रों में बाजार, स्कूल, मस्जिद, स्नानगृह और सरकार संचालन की इमारत केंद्र में हुआ करती थी। अधिकतर शहरों में सड़कों के किनारे किनारे पेड़ लगाए जाते थे और नगर के केंद्रीय भाग को हरा भरा बनाए रखा जाता था। इसके अतिरिक्त नगर के वे महत्वपूर्ण क्षेत्र जो महंगे हुआ करते थे या जिन क्षेत्रों में लोग अधिक घूमने फिरने जाते थे, उनको पेड़ों और फूलों से सुसज्जित किया जाता था। इस प्रकार शहर का केंद्र हरा भरा दिखाई देता था। इस्फहान का चार बाग मार्ग इसका स्पष्ट उदाहरण है। ईरान की राजधानी तेहरान में भी अलमासिया, अलाउद्दौला व नासिर खुसरो जैसे स्थल भी इसी प्रकार की सुंदरता के नमूने हैं।
नगरों में चौराहों या मैदानों को विशेष महत्व प्राप्त रहा है। प्राचीन समय के शहरों के अध्ययन से पता चलता है कि शहर में चौराहे का होना बहुत अहम होता है। किसी शहर में चौराहों का पाया जाना उस शहर में जिंदगी की रौनक का पता देता है। ईरान में अति प्राचीन काल से ये परंपरा रही है कि बड़े चौराहों को पेड़ पौधों और वनस्पतियों से सजाया जाता था। पिछली कुछ शताब्दियों के दौरान बागों में फव्वारों का चलन भी बढ़ने लगा, जो सामान्यतः बाग के बीच में बनाए जाते थे। ईरान की राजधानी तेहरान में अनेक महत्वपूर्ण मैदान हैं। इनमें से कुछ मैदान जैसे आज़ादी मैदान ईरानी व इस्लामी वास्तुकला के संगम का नमूना होने के साथ साथ समकालीन वास्तुकला की पहचान भी हैं। ईरान के कुछ मैदान ऐतिहासिक अहमियत रखते हैं। ये मैदान सदियों से अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक व राजनीतिक घटनाओं के साक्षी रहे हैं, जैसे तेहरान में मैदान तोपखाने, इस्फहान में मैदान इमाम, यज़्द में मैदान अमीर चखमाक और इसी प्रकार के कई अन्य ऐतिहासिक मैदान।